उदय के बारे में सोचते हुए नंदिनी अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। फिर बड़ी उत्सुकता से उसने बॉक्स जल्दी जल्दी खोला। बॉक्स खोलते ही उसे एक बेहद खूबसूरत एंटीक कलाई घड़ी दिखी, जो एक ब्रेसलेट की तरह डिज़ाइन की गई थी और काफ़ी डिज़ाइनर लग रही थी। नंदिनी घड़ी की डिज़ाइन और उसके पीतल के रंग को देखकर खुश हुई और बोली, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, उनकी पसंद तो बहुत अच्छी है। नंदिनी ने घड़ी अपने हाथ में बांध कर देखी। उसके हाथ पर भी घड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। वो घड़ी को देखकर मुस्कुराती रही। तभी इप्सिता की आँख खुली। उसने नंदिनी को इस तरह बैठी देखकर पूछा, क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? सो जाओ, वरना सुबह उठने में लेट हो जाओगी। नंदिनी ने इप्सिता की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर उसे घड़ी दिखाने ही वाली थी कि इप्सिता ने फिर से अपनी आँखें बंद कर ली। नंदिनी ने घड़ी उतारी और उसे संभालकर बॉक्स में रख दिया। अपने सामान के साथ उसे रखकर उसने अपनी बची हुई पैकिंग पूरी की। पैकिंग पूरी करने के बाद नंदिनी ने वहां लाइट बंद की और इप्सिता के बगल में लेट गई। नंदिनी जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे उदय की गहरी आवाज़ सुनाई दी। उसने झट से अपनी आँखें खोल दी। कुछ देर पहले किचन में उदय की नाक उसकी गर्दन से छुई थी। ये सोचकर नंदिनी अपनी गर्दन को छूने लगी और हल्का सा मुस्कुराई। उदय के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आँखें बंद कर ली और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब नंदिनी की आँख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर की दूसरी तरफ इप्सिता नहीं थी। नंदिनी उठकर बैठी और इप्सिता को आवाज़ लगाते हुए बोली, ईशु, क्या तुम वॉशरूम में हो? हाँ, हम तैयार हो रहे हैं, तुम भी अपने कपड़े निकालो और फटाफट तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, इप्सिता ने कहा। इप्सिता की बात सुनकर नंदिनी उठी और एयरपोर्ट जाने के लिए उसने सफ़ेद रंग का टॉप, नीले रंग की जीन्स और एक नीले रंग का लंबा श्रग निकाला। थोड़ी देर में तैयार होकर वो भी तैयार हो गई। इप्सिता नंदिनी के साथ जा ही रही थी कि इप्सिता के चेहरे की उदासी देखकर नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशु, मैंने सोचा था कि हम साथ में वापस हॉस्टल जाएंगे, लेकिन अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। मैं तुझे यहाँ छोड़कर इस समय जाना नहीं चाहती थी, लेकिन, इप्सिता ने कहा, कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही था, तुम मेरी टेंशन मत लो, चलो जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद मुझे मम्मी से तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चलने के लिए पूछना है। मेरी आधी ज़िंदगी तो परमिशन लेने में ही निकल गई है और पता नहीं आगे भी मुझे और किस किस से परमिशन लेनी पड़ेगी। नंदिनी ने इप्सिता को समझाते हुए कहा, ईशु, मैंने तुझे कल ही समझाया था ना कि तुम इस तरह की बातें नहीं करोगी, उसके बाद भी? इप्सिता ने नंदिनी की बात बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे हाँ, देखो मैं भी क्या, जाते जाते तुम्हारा मूड खराब कर रही हूँ। खैर, छोड़ो ये बेकार की बातें, हम जल्दी से नाश्ता करते हैं फिर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और सीधे कमरे से बाहर निकल गई। इप्सिता को इस तरह बाहर जाते देखकर नंदिनी ने गहरी सांस ली और चुपचाप उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। वो दोनों सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उदय अपने पिता के साथ कुछ बात करते हुए आ रहा था। उसके हाथ में उसका ऑफिस का बैग और कुछ फाइलें थी। उदय अपने पिता के साथ डाइनिंग टेबल के पास आकर रुका। उसके पिता ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम चलकर मीटिंग शुरू कर दो, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। उदय ने सिर हिलाया और नंदिनी के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। नंदिनी और इप्सिता पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी इप्सिता के पिता ने उसकी तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग इप्सिता। इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। उदय नंदिनी के बगल में बैठा था। उसने जूस का ग्लास उठाते हुए नंदिनी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। इप्सिता की माँ किचन से बाहर निकली। उनके साथ घर की एक नौकरानी भी थी। वो जैसे ही अपने पति के बगल में आकर बैठी, नौकरानी दोनों को नाश्ता परोसने लगी। इप्सिता ने अपनी माँ की तरफ देखा और खाते खाते रुक गई। इप्सिता के पिता ने उसे इस तरह रुकते देखकर कहा, क्या बात है इप्सिता, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो, कोई परेशानी है क्या? इप्सिता ने मौका पाकर कहा, वो पापा, माँ, नंदिनी आज मुंबई वापस जा रही है और आज दोपहर उसकी फ्लाइट है। इप्सिता की माँ ये सुनकर नंदिनी की तरफ देखने लगी। अपने माता पिता की सवालिया निगाहों से देखे जाने पर इप्सिता ने पूछा, तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या हम नंदिनी को छोड़ने एयरपोर्ट तक चल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आप लोग वैसे भी हमें देने नहीं दे रहे हैं, कम से कम उसे छोड़ने तो आप हमें जाने देंगे ना, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी? इप्सिता की माँ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें एयरपोर्ट जाने की क्या जरूरत है, संजय नंदिनी को एयरपोर्ट छोड़कर आएंगे। इप्सिता ने जैसे ही अपनी माँ की ये बात सुनी, उसका मूड खराब हो गया और वो चिढ़ते हुए बोली, मम्मी, क्या अब हम नंदिनी को छोड़ने भी नहीं जा सकते हैं, इसमें भी आपको परेशानी है, और वैसे भी जब संजय अंकल उसे छोड़ने जा ही रहे हैं तो मैं भी अगर उनके साथ चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? इप्सिता को इतना चिढ़ते हुए देखकर उसकी माँ बोली, इप्सिता, अब तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तुम इस तरह से पहले की तरह हर जगह घूमने नहीं जा सकती। इप्सिता ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, और पहले तो जैसे मैं हर जगह घूमने जाती थी और आप लोग मुझे जाने देते थे।
इप्सिता गुस्से में थी और गुस्से में ही उसने ये सब कुछ बोल दिया। इप्सिता की माँ उसकी बात पर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं इप्सिता, तुम अपनी दोस्त को छोड़ने एयरपोर्ट जा सकती हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना, तुम संजय के साथ ही जाओगी और संजय के साथ ही वापस आओगी, और तुम हमसे वादा करो कि नंदिनी को छोड़ने के बाद कहीं भी इधर उधर जाने की जिद नहीं करोगी। ये बात सुनकर इप्सिता ने तुरंत अपने पिता की तरफ देखकर कहा, ओके डैड, जैसा आपने बोला मैं वैसा ही करूंगी। उदय ने नाश्ता खत्म कर लिया था और वो अपनी फाइलें बैग में रख रहा था। इसे देखकर नंदिनी समझ गई कि वो अब ऑफिस के लिए निकलने वाला है। तभी नंदिनी ने उदय की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, उदय, हमें आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी घड़ी गिफ्ट करने के लिए। ये बात सुनकर उदय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने धीमी आवाज में कहा, हैव अ सेफ जर्नी, और ऋषि की शादी में तो तुम आओगी ही ना। नंदिनी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर मैं आऊंगी। उदय ने नंदिनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए बोला, ठीक है, मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अगर और देर रुका तो लेट हो जाऊंगा, ऋषि तुम भी ध्यान से जाना। इप्सिता ने सिर हिलाया और उदय ने अपना बैग उठाया और नंदिनी की तरफ देखकर कहा, बाय नंदिनी। नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया और उदय चुपचाप घर से बाहर निकल गया। नंदिनी और इप्सिता ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और इप्सिता नंदिनी के साथ कमरे में थी। नंदिनी ने अपना सारा सामान बाहर निकाला और घर के नौकर ने उसका बैग लेकर सीधे घर से बाहर निकलकर कार में रखवाना शुरू कर दिया। वहीं इप्सिता नंदिनी के साथ बाहर निकली और सीधे कार में आकर बैठ गई। नंदिनी इप्सिता का मोबाइल फोन लिए हुई थी, उसने उसमें से अभिमन्यु का नंबर अपने मोबाइल फोन पर भेज दिया और अभिमन्यु का नंबर रिसीव होते ही उसने तुरंत ही अभिमन्यु का फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और फिर अपने फोन से अभिमन्यु को मैसेज करते हुए कहा, जीजू, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, आप जल्दी वहां आ जाइए, वरना अगर मैं फ्लाइट में बैठ गई तो फिर आप इशू से नहीं मिल पाएंगे। जैसे ही अभिमन्यु को नंदिनी का मैसेज मिला, उसने रिप्लाई करते हुए कहा, ठीक है, हम 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचते हैं। नंदिनी ने ओके लिखा।
इप्सिता नंदिनी को इस तरह मैसेज करते देखकर बोली, नंदिनी किससे बात कर रही हो तुम? नंदिनी इप्सिता से पहले ही कार में आकर बैठ गई थी क्योंकि उसे अभिमन्यु को सूचित करना था, और इस तरह चुपचाप से इप्सिता के भी आकर बगल में बैठ जाने पर वो उसे देख नहीं पाई क्योंकि उसका पूरा ध्यान मोबाइल फोन में ही था। इसलिए अचानक से इप्सिता के पूछने पर वो थोड़ी सी चौंक गई। इप्सिता का सवाल सुनकर नंदिनी ने नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर किसी तरह बात संभालते हुए बोली, अरे वो मैं तो बस अपनी माँ को बता रही थी कि मैं निकल रही हूँ। इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाया। संजय ने अब तक कार स्टार्ट कर दी थी, वो दोनों पीछे वाली सीट पर बैठी थीं। थोड़ी ही देर में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गईं। क्रमशः नंदिनी के वापस जाने से पहले क्या अभिमन्यु और इप्सिता मिल पाएंगे? क्या नंदिनी की कोशिश कामयाब होगी उन दोनों को मिलाने की? और क्या संजय के रहते अभिमन्यु इप्सिता से मिल पाएगा और वो दोनों बात कर पाएंगे या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? कॉमेंट सेक्शन में बताइए।